أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صلوات بيت محمد الله. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ جس کسی نے بھی اور جن لوگوں نے بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات کو مانا، اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ان کاموں کو کیا، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ان سے رک گئے، رسول کی اطاعت کی یعنی اللہ کے حکم کی روشنی میں اللہ کے پیغامات کی روشنی میں جب رسول نے دین کو پہنچایا، تو جو جو کرنے کے لیے رسول کہتے گئے انہیں یہ لوگ کرتے گئے، اور جن کاموں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے گئے، ان کاموں سے لوگ اپنے آپ کو روکتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے بصیرت اور بے شعور اطاعت نہیں کی، بلکہ اپنے مالک کو پہچانا اور پہچان کے اس پر ایمان لائے، اور اس ایمان کے نتیجے میں ان کے اندر جذبہ اطاعت پیدا ہو گیا. انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا کہ وہ کتنا عظیم ہے، انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا کہ وہ صاحب جبروت و جلال ہے، انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا کہ وہ صاحب اقتدار ہے اور اس سے بڑا اقتدار کسی کا نہیں ہے، انہوں نے اپنے مالک کی قدرت کو، اس کے علم کو، اس کے ارادے کو، اس کے تسلط کو، اس کے ادراک کو پہچانا. تو جیسے جیسے پہچانتے گئے، ویسے ویسے مالک کی معرفت ان کے دلوں میں اس کے عظمت کا احساس پیدا کراتی رہی، اور جیسے جیسے انہیں عظمت پروردگار کا احساس ہوا، اس عظمت کے احساس کے نتیجے میں اپنی حقارت کا احساس کر کے ان کے دلوں میں اپنے مالک کا رعب پیدا ہوا، اور اسی روب کا نام ہے خشیت اللہ. اللہ کا خشیہ جن لوگوں کے دلوں میں ہے وہ کامیاب ہیں، مگر خالی اللہ کی عظمت کا احساس کر کے مر اس کا روب دلوں میں بیٹھ جانا، اس کی عظمت کا احساس کر کے اس سے اس کا ایک احترام اور شدت عظمت کا پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان معرفت پروردگار حاصل کرنے کے بعد अल्लाह पर ईमान लाने के बाद ईमान के तकाज़ों को भी पूरा करे, और जो अल्लाह ने निज़ाम जज़ा और सज़ा बनाया है, जो जन्नत और जहन्नम दो हिस्सों में आखिरत की और बाकी रह जाने वाली ज़िंदगी को तकसीम किया है, उस पर यकीन रखे और ख़ुद को अल्लाह की नाफरमानी से बचा के अजाब खुदा से अपनी हिफाजत करे, यानी अपने अंदर तकवा पैदा कर ले। तो मालिक कहता है कि जो अल्लाह की इताअत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, अज़मत इलाही का एहसास करके उनके दिलों में अल्लाह का रोब और दबदबा और खौफ पैदा होगा, और जो अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह के अजाब से खौफजदा होंगे और उससे अपना बचाव करेंगे, इस तरह जो ज़िंदगी बसर करेंगे, यही लोग वो हैं जो फ़ायज़ होने वाले हैं, जो कामयाब होने वाले हैं। इस्लाम दीन अकीदा व अमल के उन्वान से आप हज़रात की खिदमत में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम दीन अकीदा है, दीन अकीदत नहीं है। इस्लाम दीन अमल है, दीन अमलियात नहीं है। इस्लाम दीन अकीदा व अमल है कि फिर बहुत से फ़ुरूआत और शाखें निकलती हैं। इस्लाम दीन अमल है मगर बेशऊरी का अमल का कायल नहीं है। इस्लाम दीन अमल है मगर बेअक्ली के अमाल का कायल नहीं है। इस्लाम दीन अमल है मगर इस्लाम में रियाकारी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम दीन अकीदा है, दीन इल्म है, दीन खुराफात नहीं है। इस्लाम दीन इल्म है, दीन अक्ल है, दीन रस्म व रवाज नहीं है। इस्लाम दीन अदालत है, दीन जुल्म नहीं है। इस्लाम दीन एतदाल है, दीन इफरात व तफरीद और एक्सट्रीमिस्ट का दीन नहीं है। इस्लाम दीन मुरव्वत है, इस्लाम दीन मुसावात है, इस्लाम दीन सलीका है, इस्लाम दीन तहजीब है। इस्लाम जुल्म का दीन नहीं है, इस्लाम झूठ का दीन नहीं है, इस्लाम दिखावे का दीन नहीं है, इस्लाम तकब्बुर का दीन नहीं है, इस्लाम गुरूर का दीन नहीं है, इस्लाम ताकत के मुजाहरे का दीन नहीं है, इस्लाम मज़लूम को दबाने और कुचलने का दीन नहीं है, इस्लाम जालिम के साथ देने का दीन नहीं है। इस्लाम के वो सारे पहलू हैं, जब अंदर जाता जाएगा इंसान तो इस्लाम की सच्चाइयाँ उसके सामने आती जाएंगी। इस्लाम दीन अकीदा है, दीन ईमान है, दीन मारफत है। लिहाजा ये जब अकीदा आता है तो अपने आप ख़ुद इंसान को अमल की राह पे डालता है। मैंने गुज़श्ता किसी मजलिस में एक बात छेड़ी थी, आज उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दीन अकीदा व अमल, ये जो अकीदा व अमल के दरमियान रिश्ता है, जो ईमान व अमल के दरमियान रिश्ता है, जो इल्म व अमल के दरमियान रिश्ता है, उसको आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, अमल की ज़िंदगी में आदमी उस वक्त तक कदम रखता ही नहीं है जब तक कि वो ईमान या इल्म या अकीदे के मरहले में ना आ जाए। मैंने बारहा ये बात आपके सामने कही है कि आप मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं तो इस मजलिस में यक बयक नहीं आ गए हैं, आप कुछ मरहलों से गुज़रे हैं, चाहे आपको ख़ुद उन मरहलों का एहसास न हो। मजलिस सुनने अगर टीवी के सामने बैठे हैं तो यक बयक नहीं आ गए हैं, कुछ मंजिलों से गुज़रे हैं। सबसे पहली मंजिल ये थी कि आपको ख़बर मिली कि मजलिस का ये वक्त है, उसके बाद इस ख़बर के बाद आपने देखा कि मजलिस हम सुने, मजलिस के लिए वक्त निकालें, मजलिस में चलें, और आपने तय किया कि दूसरे कामों को छोड़ के हम मजलिस सुनेंगे, मजलिस में बैठेंगे, मजलिस में चलेंगे, इसलिए कि आपने अपनी अक्ल, अपने जहन और अपनी सोच से इस काम को दूसरे कामों पर तरजीह दी। मजलिस में जाके बैठने का मतलब यह है कि वहाँ जाके बैठेंगे जहाँ रसूलुल्लाह मौजूद हैं। मजलिस में जाके बैठने का मतलब यह है वहाँ जाके बैठेंगे जहाँ फातिमतुज़्ज़हरा का वजूद है। कुछ न हो तो कम से कम यही सोच आदमी को फर्श पे खींच लाती है। इस साल तो मजबूरियां हैं, मैं पिछले बरसों में अपने जवानों से कहता रहा हूं कि तुम मजलिस तक आते हो तो बाहर खड़े रहते हो, बाहर न खड़े रहो, जहाँ मजलिस हो रही है जिसे हम फ़र्श अदा कहते हैं, अलबत्ता फ़र्श का मतलब किसी चादर, किसी जाजिम, किसी कालीन का होना ज़रूरी नहीं है, जहाँ हम बैठ गए सुनने के लिए, यहाँ बैठ न सके बस खड़े हो के भी सुन रहे हैं, वो भी हमारी जगह, वही फ़र्श अदा है हमारा, और जहाँ ज़िक्र हो रहा है उनका वही जगह मजलिस है। मैंने अर्ज़ किया था, आज उसी बात को पूरे माशरे से कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन मजालिस हो रही हैं, घरों में टीवी पे मजलिसें लोग सुन रहे हैं, मगर इन मजलिसों में जो टीवी पे आ रही हैं, जो अज़ादारी इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है, इसकी जो खूबियां हैं वो भी हमें महसूस हैं, मगर इस सूरत हाल में जो बाज़ बातें हैं जिनका हमें लिहाज रखने की ज़रूरत है, जब ऑनलाइन अज़ादारी हम कर रहे हैं, ऑनलाइन महफिल व मजालिस कर रहे हैं, तो बाज़ बातें जो फ़र्श अदा और इमाम बारगाह और मस्जिद में इन प्रोग्रामों के होने पर होती थी, शायद उनकी तरफ हम मुतवज्जे न हों, और मुमकिन है कि हमारे आदाब मजलिस मजरूह हों। इसीलिए मैंने आज ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में रखना चाहिए है कि आप मजलिस में आए तो आपको ख़बर मिली मजलिस है, आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हाँ, पहले अक्ल तक ख़बर पहुँची, दिमाग तक ख़बर पहुँची, फिर उस दिमाग की ख़बर को अक्ल ने परखा और कहा अच्छा काम है, चलना चाहिए, दिल में उसका जज्बा पैदा हुआ कि चले, फिर आप यहाँ आए। तो आपका अमल है मजलिस में आना, आपका अमल है मजलिस में बैठ के सुनना, लेकिन इस अमल की मंजिल में आने से पहले आप फिक्र के मरहलों से गुजरे हैं, दिमाग के मरहलों से गुजरे हैं और दिल के मरहलों से गुजरे हैं। आपके दिमाग ने भी तय किया कि मजलिस चलेंगे और दिल के ने भी तय किया कि मजलिस चलेंगे, तब आप यहाँ तक आए। मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूँ कि अमल नतीजा होता है किसी बात के इल्म का, अमल नतीजा होता है किसी बात पर यकीन और एतमाद और भरोसे और ईमान का, अमल नतीजा होता है किसी अकीदे का। मैंने उस दिन कहा था कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज नतीजा है अकीदे तौहीद का, कि अल्लाह को जब हम पहचाना तो उसकी अजमत के एहसास ने हमें उसके सामने सजदे पे मजबूर कर दिया। रोज़ा नतीजा है अल्लाह पर ईमान का, हज अकीदे तौहीद का समरा और फल है। मैंने उस दिन यह भी अर्ज़ किया था कि जिस तरह अकीदे तौहीद वजूद खुदा का इकरार करने के बाद अमली दुनिया में आदमी कदम रखता है, नमाजी बरोज़ेदार बनता है, उसी तरह अकीदे विलायत और अकीदे इमामत जब दिलों में जगह बना लेता है और वो अकीदा ईमान की मंजिलों में आ जाता है। मैंने एक लफ्ज़ कहा, यहीं पर ज़रा तशरीह करना चाहूँगा, दो लफ्ज़ हम बोला करते हैं, एक है अकीदा और एक है ईमान। अकीदा इंसान के उस नज़रिए को कहते हैं जिसके पीछे उसके पास दलीलें हों और उन दलीलों की वजह से वो नज़रिया उसके दिमाग पर में जगह बना ले और उसे खुर्चा न जा सके। लेकिन अकीदा ताल्लुक़ रखता है इंसान के जहन से और फिक्र से। अब मेरे ज़रा इन लफ्ज़ों पे तवज्जो देंगे, मुझे बाद जगह बाद बातें ऐसी कहना पड़ती हैं कि मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि आपकी खुसूसी तवज्जो हासिल करूं, और खुसूसी तवज्जो का बेहतरीन ज़रिया सलावात है। अल्लाह की बरकतों के हासिल करने का ज़रिया भी, जज़ा हासिल करने का ज़रिया भी सलावात। मैंने खाली आप चार लोगों से थोड़ी कहा, तो यहाँ बैठे हैं उन सब से कहा है जो कहीं भी इस वक्त मेरी मजलिस में आवाज़ सुन रहे हैं, कि सलावात भेज के अपने अपने घरों में बरकतों के हासिल करने का सबब बन जाए। अकीदा उस मजबूत नज़रिए का नाम है जो इंसान दलीलों की बुनियाद पर अपने जहन में बिठा लेता है और फिर उसे उससे हटाया नहीं जा सकता, जैसे गिरह नहीं खोली जा सकती। मगर ईमान फिक्र और जहन के अमल का नाम सिर्फ नहीं है, ईमान दिल के अंदर पैदा होने वाले उस इत्मीनान का नाम है कि जो इंसान को अकीदे की अमली शक्ल तक पहुंचा देता है। अकीदा सिर्फ मैं फिर लफ्जों को दोहरा रहा हूं, मुझे अंदाजा है अकीदा सिर्फ नजरियों का नाम है जो दलीलों से कायम होते हैं, मगर ये अकीदे अमल तक इंसान को नहीं पहुंचाते। लेकिन जब यह अकीदा ईमान बन जाता है तो उसे अमल पे मजबूर कर देता है। हमने जब तक के बच्चे थे आग छूर पकड़ की तरफ हाथ बढ़ाते थे, माँ बाप रोकते थे, हाथ बढ़ाते थे माँ बाप रोकते थे। बचपन में हमें पता था कि माँ बाप रोक रहे हैं, उन्हें हमें पता था इससे बचना चाहिए, मगर ये अकीदा जो हमारे जहन में बन गया था कि आग से जल जाएंगे, ये दिल फिर भी नहीं मानता था। मगर जब उसे छू के जल गए तो अब दिल में ईमान आ गया कि ये जला देता है। अकीदा माँ बाप आग जलाती है, नजरिया और अकीदा पैदा हो गया था माँ बाप के टोकने से, मगर वो ईमान तब बना जब मैंने खुद तजुर्बा कर लिया। हम सब का अकीदा है कि मरने के बाद, इस बात को हम बावर करते हैं, भरोसा करते हैं इस बात पर कि हमें मैयत मरने के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर हम में से कितने हैं जो रात में कब्रिस्तान में जाने तैयार हैं? हम में से कितने हैं जो रात में मैयत के पास अकेले बैठे, पता है कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर हम मानते हैं कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके बावजूद डर रहे हैं? और जो गस्साल हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कब्रिस्तान के गोरकन हैं, रात के सन्नाटों में वह वहीं रहते हैं, वो कब्रों के दरमियान वो लेट के सो रहते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि हमारा अकीदा अभी ईमान से नहीं बदला है, और उनके तजर्बे ने उनके नज़रिए को उनके ईमान और इत्मीनान से बदल दिया। तो एक छोटा सा फासला अकीदा और ईमान के दरमियान है। ईमान खींच के लाता है, अकीदा वजूद में आता है, ईमान की मंजिलों से गुजर के अमल की मंजिल पे लाता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अकीदे तौहीद का नतीजा है। तो महफिल, मजलिस, मातम, आज़ादारी, अकीदे, विलायतो, इमामत के नतीजे में पैदा होने वाला अमल है। ये बात मैंने आपसे कही थी। आज यहीं से एक छोटी गुजारिश करते हुए, ऑनलाइन जो हम इस फरीजे को अंजाम दे रहे हैं, कौन सा फरीजा? वो फरीजा जिसका नाम आज़ादारी है। मैंने एक बात आज से पहले पढ़ी थी और एक बात अभी आज या कल मुताले में सामने आई, और वो चीजें जहां इंसान कभी रुक नहीं सकता, उनमें से एक चीज है हुसूल इल्म, उत्लबुल इल्मा मिनल महदे इलल्लहद, गहवारे और झूले से कब्र तक इल्म हासिल करो। दुआएं जो कुरान मजीद में हमें बताई गई हैं, उनमें से बहुत सी दुआएं हैं जो अंबिया और मुरसलीन या औलिया खुदा की जबान की दुआएं हैं, उन्हीं में से एक दुआ यह भी है, रब्बे जिदनी इल्मा व अलहिकनी बिस्सालेहीन, परवरदिगार मुझे इल्म की राह में मेरे अंदर इजाफा कर, मुझे इल्म के लिहाज से मुझे बढ़ा, जिदनी मुझे ज्यादा कर दे, इल्मन इल्म के लिहाज से, यानी मेरे इल्म को बढ़ा दे। इल्म के लिहाज से इंसान का वजूद फैलता है, इल्म आता है तो इंसान खुद फैलता है। मैं कहना यह चाहता हूं कुरान मजीद के इस कलमे से मतलब निकलता है, जिदनी मुझे ज्यादा कर दे, यानी इंसानी वजूद में फैलाव आता है जब उसको इल्म हासिल होता है। मगर यहीं पर फिर गौर करें, सिर्फ इल्म की दुआ नहीं है, रब्बे जिदनी इल्मा, ए मेरे मालिक मुझे मेरे इल्म में इजाफा कर दे, वह अलहकनी बिस्सालेहीन, और मुझे उन लोगों से मिला दे जो अच्छे कामों के करने वाले थे। यानी खाली साहब इल्म होना भी किसी काम का नहीं है, और खाली बामल होना भी किसी काम का नहीं। कुरान सिखा रहा है साहब अमल बनो तो साहब इल्म बनते हुए बनो, और साहब इल्म बनो तो बामल आलिम बनो, बेअमल आलिम ना बनो। हमको हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। मैंने एक बार पहले पढ़ी थी, एक अभी पढ़ी। देखिए, अल्लाह ने हमारी नेकियों की दो किस्में की, एक वाजिब और एक मुस्तहब। वाजिब वह जिसको हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे सजा मिलेगी। वाजिब नेकियों की बेशुमार हैं वाजिब नेकियां, और मुस्तहब नेकियां, मुस्तहब काम वाजिबात से भी ज्यादा हैं। अल्लाह ने उन्हीं कामों को वाजिब करार दिया है कि जिनके छोड़ने में इंसान का इतना नुकसान है कि मालिक जो है बाप से ज्यादा मेहरबान हमारे ऊपर, वो नहीं चाहता कि हम वो नुकसान उठाएं। लेकिन आज़ादारी के सिलसिले में हमारे उलमा में बड़ी तादाद में तहरीरें पढ़ने को मिलती हैं तवज्जो देंगे, एक ही जुमला है जो आपसे कहने के लिए मेरे पास। एक चीज़ है वाजिब, एक चीज़ है मुस्तहब। वाजिब का अजमत और मकाम अपनी जगह, मुस्तहब की अजमत और मकाम अपनी जगह। और वाजिब मुस्तहब का रिश्ता ये है कि अगर हम मुस्तहबात करते रहें वाजिबात छोड़ छोड़ के, तो उस मुस्तहबात को हम, उस मुस्तहब पर हम कुछ पाने के लायक नहीं बनते। सदका खूब दें तो उसने निकालें, नमाजें सब सारी जिंदगी पढ़ें, वाजिब नमाज छोड़ते रहें, मुस्तहब रोज़े जो साल में दो चार मशहूर आते हैं दिन उनमें रख डालें और वाजिब रोज़ा न रखें, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। मगर हमारे उलमा और हमारे साहिबान कलम का एक जुमला है कि आज़ादारी है तो मुस्तहब, मगर वो मुस्तहब है जो बहुत से वाजिबात पे भारी है। ये एक जुमला है और ये मैं पढ़ता चला रहा, तो ये सच्चाई है। इसलिए कि बहुत से वाजिबात पर भारी है मुस्तहब। ये मुस्तहब वो है जो इंसान के वजूद में पूरे दीन के अमल का जज्बा पैदा करती है। खुद तो मुस्तहब है आज़ादारी, मगर ये मातम हमें सज्दे करा देता है, ये मजलिस हमें नमाज पढ़वा देती है, इसलिए वाजिबात पर भारी है। ये जुमला पढ़ता रहा हूं मैं, मगर फिकही दुनिया में, इल्मी दुनिया में हमारे यहाँ जुमूद नहीं है, हमारे यहाँ दरवाजे फिक्र इश्तिहाद बंद नहीं है, फिक्र फकाहत बंद नहीं है। अभी मैंने आज या कल के मुताले में पढ़ा, इसी वक्त के उलमा में जो अभी बहुत ज्यादा सीनियर भी नहीं है, उन्होंने फिक्र पेश की है। कुरान मजीद की एक आयत है, वज़क्किर हुम बे अय्यामिल्लाह। कुरान कहता है कि इन लोगों को मोमिनी आम इंसानों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब यह अय्यामुल्लाह क्या है? हज मसलन यौमुल्लाह है, अल्लाह का दिन। ईद का दिन अल्लाह का दिन। जितनी चीजें जिस दिन कोई अल्लाह का बड़ा काम हुआ है, जैसे पूरा रमजान क्या है बोलिए? पूरा महीना रमजान का अल्लाह का महीना है, उसी तरह से अल्लाह के दिन भी हैं। हर वो दिन जो अल्लाह के दीन के कामों में किसी बड़े कारनामे को अपने अंदर समेटे हैं, यौमुल्लाह है। ओहद अय्यामुल्लाह में है, बद्र अय्यामुल्लाह में है, खंदक अय्यामुल्लाह में है, बेसत अय्यामुल्लाह में है, गदीर अय्यामुल्लाह में है। ढूंढते रहिए आलो अय्यामुल्लाह कौन है। कुरान कहता वज़क्किर हुम बे अय्यामिल्लाह, आप इन्हें अय्यामुल्लाह की याद दिलाएं। तो फिर बताइए गदीर के दिन महफिल करना याद दिलाना है कि नहीं? मुहर्रम में मजलिस करना याद दिलाना है कि नहीं? अब जो फकीह जो महक्की जिसने लिखा, उसने कहा ये फिर वही जरा इल्मी बात है, वज़क्किर याद दिलाओ, सीगे अम्र है, हुक्म है। मैं जब आपसे कहता हूं किसी से पानी पिलाइए, पानी पिलाओ, तो ये दो तरह के इससे मतलब निकल सकते हैं। एक जो उसके साथ जब मैं कह रहा हूं, किससे कह रहा हूं, कौन से हालात हैं, क्या पोजीशन है, उससे फैसला किया जाता है कि ये जो कह रहे हैं ये काम करो तो ये वाजिब है करना कि छोड़ नहीं सकते, या अख्तियार है कि छोड़ सकते हैं। अब एक बहुत लंबी बहस है उसूल फिक्र की, जिसे मैं यहां छेड़ना भी नहीं चाहता, वरना फिर उसी में वक्त लग जाएगा और मैं बहक गया तो जो इस बात कहने आया था उससे हट जाऊं, जैसे आज पहली मजलिस में हुआ है। अमर का सीगा करो, खाओ बैठो सुनो, नहीं का सीगा न देखो न सुनो न बोलो। ये आया हमेशा वजूब पे दलालत करते हैं या मुस्तहब भी कामों को भी कहा जाता है? नहीं, हराम भी है और मकरूह दोनों के लिए। तो अमर और नहीं दोनों इस तरह हैं कि वाजिब के लिए भी हैं, मुस्तहब के लिए भी हैं, और हराम के लिए भी हैं, और नहीं हराम और मकरूह के लिए ना करो। हो सकता हराम हो और सकता है मकरूह हो, करो हो सकता है वाजिब हो सकता है मुस्तहब हो, तफसीली बहस है। वज़क्किर हुम बे अय्यामिल्लाह, लेकिन इस आयत के इर्द गिर्द की जो आयतें हैं, तय कैसे होता है वाजिब है कि یہ وجوب کے لیے آیا عمر کے استحباب کے لیے، بڑی علمی سی بات کہہ رہا ہوں، حضرت علمیہ سے نکلی ہوئی، مگر یہ سب درس اتحاد کے حصے ہیں۔ میری قوم ذرا میرے جوان یہ بھی سمجھے کہ جو ہمارے فقہ فتوے دیتے ہیں یہ کوئی آنکھیں بوند کے بیٹھ نہیں جاتے اور اجتماع میں لکھ دیتے ہیں، یہ کتنی زحمتوں سے گزار کے اس حیثیت پہ پہنچتے ہیں۔ میں اسے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر جگہ آیات میں روایات میں امرو نہیں آیا ہے، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو۔ اب یہ طے کرنا کہ واجب پہ دلیل ہے کہ مستحب ہونے کی دلیل ہے، یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے۔ اس کا لہجہ، اس کے ارد گرد کی باتیں، اس وقت کا ماحول، اس وقت کے حالات، کہنے والا کون، کس سے کہا گیا، کن حالات میں کہا گیا، کن شرائط، اس سب کو ملا کے طے ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ امر کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک امر مولائی جہاں کرنا ہی کرنا ہے ڈنڈا ساتھ، اور ایک امر ارشادی جو راہ دکھانے کے لیے۔ ہم نے پوچھا چوراہے پہ کھڑے ہو کے بھیا ڈونگری آنا مسجد کدھر جائے، انہوں نے کہا ادھر جائیے۔ اب جو مجھ سے کہہ رہے ادھر جاؤ، مہاراشٹری آنا ہو کہ ادھر جا، تو اس نے جو مجھ سے کہا ادھر جا تو یہ ادھر جا، دلی وا کہہ رہا ادھر چل، تو یہ جو کہہ رہا ہے اس لٹھماری لہجے میں، تو کیا اس کے اس لٹھماری سے واجب ہو جائے گا مجھ میں؟ وہ جو کہہ رہا ادھر جاؤ ادھر جائیے، لکھنؤ والا کہہ رہا ادھر جائیے، حیدرآباد والا کہا ادھر کو جائیے، تو اب یہ جو کہہ رہا ہے تو یہ کیا واجب ہو گیا مجھ پہ؟ نہیں، وہ راستہ دکھانے کے لیے امر کر رہا ہے، جائیے ادھر، یہ راستہ ہے۔ امر ارشادی ایک چیز ہوتا ہے کہ امر مولوی، مولائی، مولوی، مولوی جس سے بن گیا، مولوی یعنی وہ حکم جو مولا کی طرف سے، حاکم کی طرف سے، تو کرنا ہی کرنا ہے، ایک راستہ دکھانے کے لیے اور ایک کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنا طے کرنا ہوتی ہیں۔ مذکر ہوں بے ایام اللہ، یہ انہیں یاد دلاؤ ایام ایام اللہ کی، اللہ کے دنوں کی، انہیں غدیر یاد دلاؤ، انہیں بعثت یاد دلاؤ، انہیں ولادت رسول یاد دلاؤ، انہیں حج کی عرفہ یاد دلاؤ، انہیں منا جو یوم اللہ ہیں ان کی یاد دلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ارد گرد کی ساری آیتیں اور ماحول بتاتا ہے کہ یہ عمل واجب قرار دیا ہے اللہ نے، یعنی ایام اللہ کو یاد دلانا واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجب عینی جو سب پہ واجب ہو، اور ایک ہے واجب کفائی کہ جب اتنے لوگ کر لیں کہ وہ کام ہو جائے تو باقی پہ ساقط ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے فقہا کہتے رہے ہیں کہ عزاداری مستحب ہے جو واجب پہ بھاری، مگر میں نے تو اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ عزاداری مستحب نہیں ہے، عزاداری واجب ہے، البتہ واجب کفائی ہے، اتنے لوگ عزاداری کریں کہ پیغام کربلا سب تک پہنچ جائے۔ اور اگر آپ غور کریں اس سال کی پابندیوں میں ہمارے مراجع نے ہمیں عزاداری کے جو سلیقے سکھائے تھے اس میں جلوس رک گئے، گھبراؤ نہیں، بڑی مجلسیں بڑے اجتماع نہیں کر سکتے، مت گھبراؤ، انہوں نے خاموشی سے ہمیں راہ دکھا دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں کہیں مقامی انتظامیہ ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ نایت اللہ العظمیٰ سیستانی نے کہا تھا کہ جن علاقوں میں تمہارے امکان میں ہے حکومت کا قانون توڑے بغیر، ایک اس علاقے کی آبادی کے مال میں تصرف اور نقصان کیے بغیر، دو، ہم ایک جھنڈی بھی کسی کے مکان پہ نہیں لگا سکتے اگر وہ راضی نہیں، ایک پوسٹر بھی کسی کی دیوار پہ نہیں چپکا سکتے اگر وہ راضی اس علاقے کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کو تکلیف دیے بغیر، ان کے مال میں تصرف کیے بغیر، اس پورے علاقے کو سیاہ پرچموں سے، بینروں سے اور کلمات سے سجا دو کہ ہر طرف سے جدھر نگاہ اٹھے ادھر حسین حسین دکھائی دینے لگے۔ یہ اس سال کی ان کی نصیحتوں میں ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں جلوس نہیں نکال سکے، مگر جہاں تک ہو سکے بینر سے اور دوسری چیزوں سے، سیاہ پرچموں سے سجا دیں کہ پورا ماحول سوگوار دکھائی دینے لگے۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ کہ اللہ نے ہمارے عقیدے کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے، ایمان کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، عمل کی دو قسمیں، اللہ کی مہربانیاں دیکھیے اور عزاداری کے لیے اس کا اہتمام دیکھیے۔ عقیدے کے نتیجے میں انسان کو عمل کرنا، عمل کی دو قسمیں، میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ کچھ اعمال اللہ ایسے کہتا ہے کہ جن کا طریقہ معین کر دیتا ہے۔ ابھی کل پرسوں میں نے بات کی، مثلاً کہتا نماز صبح پڑھو تو بتا دیا نا کہ کیسے پڑھو، دو رکعت پڑھو، اس طرح پڑھو، یہ تکبیرۃ الاحرام کہو، یہ سورہ پڑھو، یہ ہم پڑھو، یہ دوسرا سورہ پڑھو، رکوع کرو، ایک قنوت پڑھو، تشہد پڑھو، جو بھی بتا دیا بتا دیا۔ اب اس میں ہم کو کسی تبدیلی کا حق नहीं है। अगर उसमें उसने तशहुद बता दिया है कि इस तरह पढ़ो, तो फिर अब हम उस तशहुद में ना कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं। ये बहस भी हमारे दरमियान पता नहीं कहाँ से आ गई। इन चीज़ों को कहा जाता है तौकीफी, जहाँ वो चीज़ें हैं जहाँ अल्लाह की तरफ से रोक दिया गया कि इसको ऐसे ही करना है बस, अब उसमें हमारे पास घटाने बढ़ाने गुंजाइश नहीं है। तशहुद के कलमात तौकीफी हैं, मुअय्यन कर दिए हैं। ठीक है कि रिसालत से विलायत जुड़ी हुई है, लेकिन आले मोहम्मद कहने के बाद अल्लाह ने भी उसमें शामिल कर दिया। आप क्यों चाहते हैं कि आपके लफ्ज़ों में पहुँचे? क्या तशहुद जिक्र विलायत से खाली है? तशहुद में किसी भी फ़र्क़े इस्लाम में बगैर सलावात के तशहुद नहीं है। हमारी आपकी नासमझी कि हम समझ रहे हैं तशहुद में विलायत नहीं आई है। सलावात आ गई तो आले मोहम्मद आ गई तो विलायत आ गई। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले। और ये वही मसला है जो हम अभी आपसे पहली मजलिस से कह रहे थे कि नस के मुकाबले में क्या इज्तिहाद, ये वही वाला इज्तिहाद है जो हराम है। अल्लाह ने यहां मंसूस कर दिया तशहुद, तौकीफी अब जो है वह है। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो अल्लाह की तरफ से अमल का हुक्म होता तवज्जो दे, अब वहां पहुंचा जहां के लिए मैंने इतनी गुफ्तगु छेड़ी थी। जो अमल हमें करना होते हैं, चाहे वाजिबात हो चाहे मुस्तहबात, वो दो तरह के हैं, हुक्म दे के तरीका मुअय्यन, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जो नेकियां अगर आप उनमें गौर करें तो बहुत सी शर्तें हर जगह पाई जाती हैं। मसलन नेकियां करने की उम्र क्या है? का बलूक, लड़की 9 साल की हो जाए, लड़का 15 साल का हो। अच्छा चलिए साहब, हो गए तो आप क्या हर वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दें? कहा नहीं, जब वक्त आएगा तब। तो दूसरी शर्त है वक्त की। हमने कहा अच्छा वक्त आ गया तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत सी जगहों पर खाली वक्त आना काफ़ी नहीं है, ख़ास जगह की भी ज़रूरत है। मसलन हज है, हज करने के लिए ख़ास जगह है, वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा फिर कहा नहीं, ख़ास तारीखें और ख़ास महीना भी होना ज़रूरी है हज में मसलन। तो बहुत सी शर्तें हैं आमाल में आम तौर पर, उनमें से एक शर्त है बलूक की, एक शर्त है वक्त आने की, बाद नमाज आमाल है जिनमें ख़ास तारीख की शर्त है, ख़ास दिन नमाज जुमा है तो जुमे को होगी दिन की शर्त है, जोहर है तो जोहर के वक्त होगी वक्त की शर्त है। तो जितनी चीज़ें आमाल हैं उनमें तरह तरह की शर्तें हैं। कुछ आमाल अल्लाह ने ऐसे रखे हैं जहां ये शर्तें कहीं नहीं हैं। मसलन इल्म, इल्म फरीजा हुसूल उसका, मगर इल्म में किसी खास उम्र पे जिम्मेदारी नहीं रखी गई। मिनल महद, बुलूग का इंतजार नहीं है। किसी खास जगह मक्के जाके इल्म हासिल करो नहीं, चीन जाना पड़े तो जाओ, जहां मिले वहां ले लो। अच्छा, दीन इबादत में नमाज पढ़ने खड़े हो तो ढूंढ के लाओ इमाम जमात, मोमिन भी हो, आलिम भी हो, आदिल भी हो। और इल्म लेना है का तुम्हारी खोई हुई, तुम्हारा खोया हुआ कीमती खजाना है, जहां मिल जाए ले लो, चाहे अल्लाह के मुनकिर के पास ही क्यों ना मिले। तो ना जगह की कैद लगाई, ना वक्त की कैद लगाई, ना उम्र की कैद लगाई। ये भी तो नहीं कहा हज पैसा लो हो तब करने जाओ, जकात कमाओ तो निकालो, खुमस बचाओ तो निकालो। इल्म में कोई शर्त नहीं है, गरीब हो तो भी इल्म हासिल करो, अमीर है तो भी इल्म हासिल करो। तो कुछ फरायद ऐसे रखे जहां अल्लाह ने किसी तरह की कैद रखी ही नहीं है। ज़कात में पैसे की कैद है, खुम्स में बचत की कैद है, रमज़ान में महीने की सेहत की कैद है, हज में जगह की, पैसे की, सफ़र की सहूलतों की कैद है, नमाज में वक्त की कैद है, बुलूग की तो कम से कम कैद है। एक इल्म मुझे देखे मिला और अब जो मैंने गौर किया तो अल्लाह ने जो नेकियां हमारे जिम्मे रखी हैं उनमें एक अदादारी मिली है। कहा बचपन से हमारी मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में डालो। अमीर हो चाहे गरीब हो, आंसू तुम्हें बहना इसलिए कि तुम हमारे टुकड़े हो। तो बिला कैद अल्लाह ने जो जी में हमें तिक्रता की है उनमें से एक अजादारी रखी है। और जितनी शर्तें घटती जाए अमल की गुंजाइश उतनी बढ़ती जाती है। सोचो अगर अल्लाह ने अदादारी के कुछ खास तरीके मुअय्यन कर दिए होते जो कल परसों भी मैंने बात कही थी तो हम कितना मायूस होते। जुलूस का तरीका नहीं अपना पा रहे, एक नेकी छुट गई, फर्श अदा बिछा के बजमा नहीं लगा पा रहे का कोई बात नहीं है। हमने तुम्हारे हाथों में तरीका दे दिया है, बड़े मजमे छूट गए तो पूरी दुनिया में छोटे मजमों की मजलिस घर घर कर डालो, बड़े जुलूस खत्म हो गए तो हर घर में चार आदमी खड़े होके लोहा पढ़ के मातम करके घर घर से जुलूस निकाल डालो। अब जो बात कहना चाहता था आज खास करके आपकी खिदमत में, ताकि हम मुतवज्जे रहें, देखिए ऑनलाइन एक नया दरवाजा खुला है, आजादारी महफिल मजलिस दर्स क्लास सब का दरवाजा खुला। हम हौदा चला रहे थे, बच्चों को बिठा बिठा के पकड़ पकड़ के पढ़ा रहे थे, मकतब चला रहे थे पकड़ पकड़ पढ़ा रहे थे। अब जब छुट्टी होके चले गए तो सोचा कि आईने ऐसे टहलने दें फिर गुल्ली डंडा खेलने दें, हमने कहा नहीं, ऑनलाइन की अकल आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मकतब भी ऑनलाइन चल रहे हैं, हौजा भी ऑनलाइन चल रहा है, मजालिस भी हो रही, तो अल्लाह की रहमत ही तो है। हमें लगता पीटे गए हैं और वो जानता पीस के निखारे जा रहे हैं। अब जो कहना चाहता हूँ, देखिए जो ऑनलाइन जो कुछ हो रहा है इसकी है कुछ खूबियाँ और कुछ हैं बेतवज्जोही के नतीजे में खराबियाँ। खूबियां ये हैं कि इसमें हम जिस वक्त चाहें मजलिस मौजूद है, बाकी अगर मैं इमामबाड़ों की मजलिस थी जो उसका वक्त है उसी में जाना था, हम उस वक्त मशगूल थे दुकान पे कारोबार में नौकरी में मुलाजमत में कहीं भी, अब उसकी मजबूरी खत्म हो गई, जिस वक्त चाहें मजलिस रिकॉर्डेड लाइव कोई ना कोई मिलना ही मिलना है। हमारे पास वक्त की कमी की गुंजाइश खत्म हो गई, जब वक्त तुम करो तब तुम्हारे सामने मौका मौजूद है। जो यहां तक नहीं आते थे पैगाम उन तक पहुंच रहा है, जो कभी इमाम बड़े ने इशारतन आपसे कहा था कि भी एक रहमत परवरदगार है, इमाम बाड़ों में हम ही बैठते थे आके, अब घरों में तो सब बैठे हैं, टीवी घुमाते घुमाते कभी चैनल बदलते बदलते ही विन पे रुक जाते हैं, मुझे मालूम हुआ उनका, हम चैनल बदल रहे थे विन पे रुक गए, बात हो रही थी सुनने लगे अच्छी लगी तो सुनने लगे तो हम आपके फैन हो गए। अब अहले बैत की बात जब कानों में पहुंच जाएगी तो फैन तो होना ही है। तो मेरे अजीजों गुंजाइशें बड़ी हैं लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मैंने एक चीज ये देखी है कि जब आदमी आके सीधे फर्श अदा पे सामने बैठता है तो 100% कम से कम जाहिरी तौर पर उसकी तवज्जो खतीब की तरफ होती है। अगर जो उसमें भी हम खुतबा को बड़ा तजुर्बा होता, जितनी बार ये दरवाजा खुलेगा उतनी बार आप सब उधर मुड़ के देखेंगे। अभी एक बड़ी सी मक्खी आ जाए, देखिए शैतान की तरह सबकी निगाहें घुमाती फिरेगी तो हमारी तवज्जो तो बहुत जल्दी से हट जाती है। अभी जब नमाज में कंट्रोल नहीं हो पाता तो यहाँ क्या हो पाएगा, लेकिन नमाज में तो परवरदगार से बात होती है, वो तो सामने नहीं होता, यहाँ तो खतीब भी बेमुरवत बैठा तो वहीं ठोक देता है, किधर हो, जरा आपको ऊँगते देखा का एक सलवात भेज के जगा दीजिए जो सो रहे हैं, हालांकि आप ही सो रहे थे इसलिए आपसे कहा था। लेकिन जब ऑनलाइन होता है तो हमने अब तक ये देखा है कि हम अपनी मेज़ पर बैठे काम भी कर रहे हैं मजलिस भी चल रही, खाना भी खा रहे हैं मजलिस भी चल रही, बातें भी कर रहे हैं मजलिस भी चल रही है, फ़ोन अटेंड भी कर रहे हैं मजलिस भी चल रही है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ठीक है आप अपने कामों के अंजाम देने के साथ साथ भी इस्तेफादा करते रहें, इसलिए कि 24 घंटे आप काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने 24 घंटे में कम से कम उतने घंटे जितने मुहर्रम में आप फर्श अदा पे जाके बैठते थे अपने घर में मजलिस के सुनने के लिए टीवी के सामने बैठ के सुने, पहली बात। दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि अपने घर में एक ठिकाना जरूर बनाएं, कोई एक गोशा जमीन का कि जो आपके मजहबी कामों के अंजाम देने की जगह हो, वहीं पे बैठ के आप दुआ पढ़ें, वहीं बैठ के आप नमाज पढ़ें, वहीं बैठ के आप मजलिस सुने। क्यों, मैं अभी वही अर्ज करना चाहता हूँ और इसी मजलिसात की खत्म हो जाएगी। हमने आपने सबने मसाइल में पढ़ा है एक चीज़ को और एक चीज़ रवायात में पढ़ी है। मसाइल में पढ़ा है कि जब किसी इंसान का दम निकलने लगे और दम निकलने में दुश्वारी हो तो उस दम निकलने की दुश्वारी को कम करने के लिए मिटाने के लिए तदबीरें बताई गई हैं, उन तदबीरों में सूरह यासीन का तिलावत है, कलिमात याद नहीं रखे इस्तेला ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम वाले कलिमात, जिसके शबी कलिमात हम कुनूत में पढ़ते हैं, उनकी तिलावत है, उससे कलिमात को दौरवाना है, इन कलिमात को सूरह साफ़ात और सफ की तिलावत है, सूरह यासीन तो मारूफ है ही है, इसके अलावा और सूरह जैसे सहूलत पैदा होती है उन्हीं में दम निकलने में जब दुश्वारी हो रही है तो रवायात में यह है कि उसे ले जा के वहाँ लिटा दो जहाँ वो नमाज पढ़ा करता था। मजहब ने हमसे कहा है कि वाजिब नमाजें मस्जिद में जाके पढ़ो जमात से, लेकिन घर में मुस्तहब नमाजों को अंजाम दो और एक ठिकाना बनाओ, वहाँ एक ख़ास ठिकाना बनाओ। ठिकाना बनाने के मुख्तलिफ मसलहतें हैं, उनमें से एक जो सुना रहा था एक उससे पहले सुन लें। क़यामत में जो जो चीज़ें गवाही देंगे आप जानते हैं क्या क्या है? हमारी उंगलियाँ गवाही देंगी, हमारी खाल गवाही देगी, हमारे अज़ा व जवारे गवाही देंगे, अच्छाइयों की बुराइयों की भी, किरामन कातिबीन गवाही देंगे। उन्हीं गवाहों में ज़मीन के टुकड़े भी हैं। जिस ज़मीन के टुकड़े पे आप जो करेंगे वो टुकड़ा आपकी वहाँ गवाही देगा। तो अगर कहीं नमाज पढ़ी है तो गवाही देगा हम ऊपर खड़े हो के तेरा सज्दा किया था। और रिवायत में है भी कि जब कोई बेनमाजी दफन होता है तो ज़मीन पीसती है कि तू मेरे सीने पे चलता था, मेरे रब को सज्दा नहीं करता था, आज तुझे मज़ा चखाऊँ। और जब कोई नमाजी नमाज के लिए ज़मीन में दफन होता है तो ज़मीन कुशादा हो जाती, कहती तू मेरे सीने पे चल के मेरे रब का सज्दा करता था, मैं तेरी मुंतज़िर थी, आ तेरे अपने वसी गोद में ले लूँ, ज़मीन फैला देती। तो अगर नमाजों की गवाही देगी ज़मीन तो हमने किसी जगह बैठ के जिक्र रसूल सुना, जिक्र खुदा सुना, जिक्र फातिमा किया, आंखों से आंसू गिरे, हमने वहीं पे बैठ के मातम किया, तो इंशाअल्लाह कल ये गवाही देगी कि हम गवाह हैं कि इस जगह बैठ के इन्होंने तेरे बेटे फातिमा तेरे बेटे को मातम किया था। पैती गवाही कोई कम कीमती नहीं है। तो एक जगह हम अपनी बना ले, रवायत कहती है कि दम निकलने मुश्किल हो तो वहाँ ले जाके लेटा दो जहाँ नमाज पढ़ता था। मैं दो जुमले यहाँ हमेशा कहता हूँ अपने जवानों से जब रिवायत पढ़ता हूँ। पहली बात ये कि मेरे अजीज़ों जहाँ नमाज पढ़ते थे हम उस जगह में अल्लाह ने इतना असर पैदा कर दिया कि वो मेरी मौत को आसान कर दे, तो फिर मेरी नमाज में कितनी ताकत अता करेगा वो, ये पहली बात। और दूसरी बात यह कि मेरा जैसा जहाँ नमाज पढ़ ले, जहाँ उसके आंसू हो सकता है कभी गिर गए हों दो, उसमें अल्लाह इतना असर पैदा कर दे कि वो मेरे मरजुल मौत में तकलीफ़ को कम कर दे या मिटा दे, तो वो खाके करबला जहाँ हुसैन ने सज्दा किया, जहाँ हुसैन का खून जज्ब हुआ है, वो अगर खाके शिफा बन जाए तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है। तो इस ज़मीन में अल्लाह ने असर रखा है। मैंने ये बात आपकी खिदमत में क्यों कही कि उस जगह को मखसूस करें? नमाज पढ़ने के लिए मखसूस, मौत के वक्त काम आएगी। जिक्र के लिए मखसूस, सुनिए हमने अपने उलमा से अइम्मे ताहिरीन की सीरत से सीखे हुए सबक हमें अपने उलमा से सीखने को मिलते हैं। हमारे उलमा में जो अभी बुजुर्ग तरीन उलमा में जो साहिब मारिफत भी थे, साहिब इरफान भी थे, अल्लामा तबातबाई मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अलमीज़ान गुजरे हैं। मैंने उनके तस्करों में अभी पढ़ा है दो चार दिन पहले कि वो जो मदरसे फैजिया है हरम मासूमा, उसके सामने एक सड़क के बाद जो बाज़ार है वो गुज़र अली ख़ान कहलाता है, गुज़र ख़ान कहलाता है। उसमें उनके कोई चाहने वाले थे जहाँ वो एक सालाना मजलिस अपने घर में करते थे और उसमें अल्लामा को बुलाते थे और शिरकत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। जब वो वहाँ तशरीफ़ ले गए तो जिस जगह हमेशा उस घर की जिस ज़मीन टुकड़े में जिस हाल में कम जैसे हम लोग इस हाल में बैठे हैं, हमारे घरों में जगह होती जो हम अपने घर बनाते वक्त, हमारे बुजुर्ग तो ज़मीनें बड़ी थी तो इमामबाड़े ही घर के अंदर बनाते थे। हमारे मशरक़ी यूपी में मगरबी यूपी में आज भी घरों के अंदर पूरे पूरे इमामबाड़े हैं। अब ज़मीनें उतनी नहीं रहेगी, इमामबाड़े नहीं बना सकते, लेकिन इन्हीं फ्लैट्स में छोटा सा कोई टुकड़ा हमारे पास एक मुसल्ले भर का होना चाहिए, एक आज़ादार के बैठने भर का होना चाहिए। अल्लामा को उस जगह जहाँ हमेशा मजलिस होती थी वहाँ बिठाने के बजाय दूसरी जगह बिठाया गया। वहाँ कुछ तामीरी काम चल रहा, तोड़ के फिर बना रहे या मरम्मत चल रही थी, अल्लामा को दूसरी जगह बिठाया गया, बैठ गए अल्लामा तबातबाई। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद पूछा कि हमेशा तो यहाँ नहीं बैठते थे, आज यहाँ क्यों बिठाया है? तो लोगों ने कहा कि वहाँ तामीरी काम चल रहा है, यहाँ इसलिए आपको नहीं बिठाया। तो अल्लामा ने कहा ना कितने दिन से यहाँ मजलिस हो रही थी, जो इस साल वहाँ तामीरी काम चल रहा मजलिस नहीं हुई, तो लोगों ने कहा कि 40 साल से वहाँ मजलिस हो रही थी। अल्लामा ने कहा मुझे वहीं ले चलो, मुझे उसी जगह ले चलो, ज़मीन का वो टुकड़ा जिस पर 40 साल से जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो रहा था, वहाँ मलाइका का आना जाना हो रहा था, उसमें अल्लाह ने बरकत दी होगी, मैं उस बरकत से खुद को महरूम नहीं करना चाहता। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने घर में, मैं अपने घर में एक छोटी सी जगह ऐसे बनाए, हमने मुसलसल पढ़ा है कि मलाइका अल्लाह की तरफ से कुछ मुअय्यन ज़मीन पर आते हैं, और जहाँ कहीं चाहने वाले आले मोहम्मद के जमा हो के उनका तस्करा करते हैं वहीं बैठ जाते हैं। रुक गए, देर हो गई, वापस पहुँचे, हाँ तो दूसरों ने पूछा आज अजीब खुशबू आ रही, कहाँ से खुशबू लाए, कहाँ इतनी देर हुई, कहा कि वहाँ गए थे, वहाँ जिक्र हो रहा था इसलिए रुक गए। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं हमारा घर उन मलाइका की गुजरगाह बन जाए, हमारे घरों में किसी ज़मीन के टुकड़े पर रसूल तशरीफ़ फरमा हो जाए, उनकी बेटी लगते जगत तो तशरीफ़ फरमा हो जाए, तो हमें अपने घरों में एक छोटा सा टुकड़ा इबादत के लिए बनाना चाहिए, जहाँ हम नमाज भी पढ़ें, जहाँ हम किताबें भी मजहबी रखें, जहाँ हम इबादत के दूसरे वसाइल भी रखें, जहाँ मजलिस का इंतज़ाम भी करें, जहाँ बैठ के हम मजलिस सुने। इससे हम खुद भी बहुत कुछ बरकतें हासिल करेंगे और हमारी अगली नस्लें सीख जाएंगी हमें देख के, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया, एहतराम अज़ा सिखाई, एहतराम तबरुकात अज़ा सिखाया हमें, आलम का एहतराम, हमें तजी का एहतराम, जो मंसूब हमने उनकी तरफ कर दिया है, जब उनका एहतराम हमें इस तरह सिखाया जाएगा, तो जो खुद अल्लाह के मंसूब कर दी हुई हरम मुतहर हैं, वहाँ हम जाएंगे तो हमारे अंदर सलीका होगा कि नहीं होगा। नई नस्ल को तरबियत करना है तो अपने घरों को अज़ा खाना बनाओ अजीज़ों। बस मैंने आज की ज़हमत आपको यहीं पर ख़त्म की मेरे अजीज़ों। मैंने उस दिन जब यहाँ एक सेपहर को मजलिस पढ़ी थी, तो मैं बड़ी देर तक इसी बात पे लरसता रहा, सुनने के लिए उस वक्त कोई नहीं था, फिर लोग आ गए, मैं लरसता रहा कि मजमा कोई नहीं, तो हम बेचैन हो रहे, लेकिन फिर तस्वुर में आया कि यहीं कहीं तो रसूलुल्लाह भी बैठे हैं, यहीं कहीं तो फ़ातिमतु ज़हरा भी बैठी हैं। बड़ा सख्त काम है, मगर उन्हीं के काम के लिए हाजिर होते हैं और उन्हीं की दी हुई तौफीक है जिसके सहारे हाजिर होते हैं। अय्याम अज़ा शुरू भी हुए और ढलान की तरफ आ भी गए, पाँच मुहर्रम गुजर गई, पाँच मुहर्रम गुजर गई, यानी वो तारीख बस नज़दीक है जब हुसैन के हैं मोहसे नन्ने नन्ने बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद करें। मैंने कल परसों आपकी खिदमत में बार बार बात कही है कि पाँच मुहर्रम से हुसैन के खेमों में पानी आना रुक गया था, पानी आना रुक गया था, पाँच मुहर्रम से सात मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया। सात मुहर्रम की सुबह से सब प्यासे थे और इतने प्यासे थे, अभी पिछली मजलिस में मैंने पढ़ा कि जनाब ज़ुहैर कैन पानी लेने गए थे, सात मुहर्रम को पानी नहीं मिला था, मगर ज़ुहैर ने कहा था मैंने देखे बच्चे प्यासे हैं और बहुत प्यासे हैं और इतने प्यासे हैं कि अगर इन्हें पानी ना मिलेगा तो मर जाएंगे। उसी फ़िक्र से मेरे जहन में बेचैनी आई थी कि ज़ुहैर तुमने ये कैफियत जो बयान की है, ये तो तुमने मोहम्मद बाकिर की कैफियत बयान की होगी, सकीना की कैफियत बयान की होगी, फजल इब्ने अब्बास की कैफियत, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जब चचा अब्बास गया है तो उसको हल्के में लेके आए हैं, जो अपने पैरों पर चल रहे हैं, जो तीन साल चार साल के हैं, जिसमें मुस्लिम ने और सजा का बच्चा भी शामिल होगा, तुमने उन पैर पर चलते बच्चों को देखा, जब तुमने उन्हें देखा है जो तीन चार साल के हैं, उनके लिए भी कह रहे हो कि पानी ना मिला तो मर जाएंगे, तो मेरा वो छः महीना का आका ज़्यादा वो रबाब का फूल, अरे जब पांच से पानी नहीं है तो सकीना के लिए, बाकिर के लिए, बच्चों के लिए, सकीना के लिए, बच्चों के लिए, हुसैन ने पानी कब से पीना छोड़ा, ज़ैनब ने पानी कब, मेरे असगर के लिए पानी बच जाए, रबाब ने कब से पानी पीना छोड़ दिया, और जो छोड़ दिया है तो अब सात मुहर्रम की सुबह आई है तो न पानी है न माँ के सीने में बच्चे के लिए दूध फराहम है। गश के आलम में आ गया, चौथा दिन है असर आशूर का, हुसैन अकबर के जलादे को कलेजे से लगा के बच्चों के सहारे खैमों तक पहुंचा चुके, अब कोई नहीं है कि जो हुसैन की मदद को आए, फिर भी पहुंचे लश्कर यजीद के सामने, बुलाया हमारे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, گفتگو تمام کی، حجت تمام ہوئی، پھر بھی آواز دی حل من ناصر ینصر اللہ، کرے اکیلا ہوں، کوئی ہے مددگار، فریاد کر رہا ہوں، کوئی ہے میری فریاد کو پہنچنے والا، چاروں طرف بکھلے لاشوں پہ خیموں کی طرف مڑے تو میں کیا ہو گیا، جواب نہیں دیتے کہ ایک مرتبہ خیموں سے بیویوں کے گریے کی آواز میدان تک پہنچ گئی، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، زینب ابھی تمہارا بھیا زندہ ہے، یہ اتنا بے چین ہو کے کیوں گریا ہو رہا ہے، کہ آواز لشکر تک گئی، کہا بھیا ابھی تم نے جو سنائے المن بلن کی، تمہارے آواز کی بے بسی نے اصغر کی نیند توڑ دی، غش کھا کے بچے نے تڑپ کے جھولے سے گرا دیا، اب کسی گود میں چین نہیں لیتا، حسین سمجھ گئے میرا لال مدینے سے جو وعدہ کر کے چلا تھا اسے پورا کرنا چاہتا ہے، لاؤ میرے بچے کو دو، شاید کوئی رحم کھا کے پانی پلا دے، رباب للے سے کملائے ہوئے پھول کو گود میں لے کے آئی، حسین کی آغوش میں دیا، حسین نے ہاتھوں پہ لیا، کملایا ہوا پھول سمیٹ کے لے کے چلے، تیز دھوپ نکلنے سے پہلے ابا کا دامن ڈالا کہ دروازے پہ رباب ماں پہنچ گئی بھیا کو آخری نظریں دیکھنے کے لیے، ہم نے آپ نے سب نے سفر کیے ہیں، جب تک ہماری ماں زندہ تھی ہماری ماں دروازے پہ آ کے گھڑی ہو جاتی تھی آخری نظر دیکھنے کے لیے، اور رو روتے رخصت کرتی تھی، جب کہ بتاتے پھر آئے گا پھر آئے گا، ہائے رباب گھڑی ہے اسے بتا جو گیا واپس نہ آیا، جا میرے لال، نگاہوں سے کہا، سر اٹھا کے حسین کے چہرے پر نظر ڈالی، آقا میرے بچے کی خیر ہو، کوئی گیا تو زندہ واپس نہ آیا، حسین سر جھکائے آئے ٹیلے کی بلندی پہ پہنچے، بچے کو سامنے کیا، تم میرے دشمن میرے خون کے پیاسے، اس بے قصور کا قصور کیا، اسے پانی دے دو، بے اثر ہو گئی آواز، حسین نے کہا بیٹا تیرے باپ کی آواز اتنا اثر نہیں کرتی، تو اپنے باپ کی بات ان تک پہنچا دے، چھ مہینے کے اصغر نے پورے بدن کی طاقت سے بیٹھی، ہوبک کے رخ کیا لشکر کا، پپڑائے ہوٹوں پہ سوکھی زبان پھیری، لشکر تڑپ کے رویا، انقلاب قریب، حکم دیا حرملہ جلدی قصہ تمام کر، بھاری بھرکم تیر پھلوں کا تیر جو اونٹ کو زبا کر دے، ننا سا گلا باپ کی طرح سنسنانا، تیر ہوبک کے گلا آگے بڑھایا، گلا چھنا، حسین کے بازو میں تیر اترا، بچہ پلٹ کے باپ کی طرف آ گیا، حسین نے لاشے کو سنبھالا، خون کا قطرہ نہ زمین پہ گرنے دیا نہ آسمان نے قبول کیا، چہرے پہ ملا، ایک امتحان دے چکے تھے اس سے بڑا امتحان مولا، اکبر کے کلیجے سے برچی نکالی مشکل کام تھا، مگر دونوں ہاتھ برچی پہ تھے، لاشا زمین پہ، یا حسین عجب امتحان دے رہے ہیں، ارے لاشا بھی سنبھالنا ہے، تیر کو اگر کھینچے تو گلے سے پھر واپس آئے گا، لہذا بازو کی پشت کی جانب سے تیر کھینچنا، خون نہ گرنے پائے ورنہ زمین سے قطرہ نہ اگے گا، تیر کھینچا، ننی لاش لے کے خیموں کا رخ کیا، شاید رباب کا چہرہ سامنے آیا، آقا میرے بچے کی خیر، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر دل کو مضبوط کیا، رے دل میں قضائی و تسلیم اللہ امرے، چل مرحلوں سے گزر کے خیمے تک پہنچے رباب، لے جا اپنے لال کو، لے جا اپنے لال کو، अब्बा से पहले बहन दौड़ के आ गई, मेरा भैया पानी पी के आ गया क्या? अरे अम्मा भी पहुंच गई थी दहशत, माने का मेरे लाल तेरे जैसे ऐसे जबा कर दिए जाते हैं। हुसैन ने ध्यान और दिया, पुष्प आए, नन्नी से कब्र सुलकार से गोदी, नन्नी से ला दफनाई। अरे फिर उस कैफियत को शायर करबला ने कहा, नन्नी से कब्र खोद के अकबर असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए।